इस्लामाबाद भालपुर पिशावर से दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 16 जमाद सानी 1443 हिजरी जनवरी की है 20 तारीख 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक।
जागो जागो
द सनराइज शो विद अदील अजहर।
अदील अजहर, अदील अजहर।
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें आगे बढ़ने का म्यूजिक, आप लोगों के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 7:22 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड इट इज अ वार्म मॉर्निंग हियर इन कराची। जैसा कि फोरकास्ट था, जैसा कि प्रेडिक्टेड था, कराची की आज की सुबह जो है ना वो वाकई कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे फरवरी के मिड या फरवरी के खुताम पे हम आ गए। आई थिंक द टेम्परेचर टुडे व्हेन आई चेक माई वेदर विजिट इट्स एट 21 डिग्री सेल्सियस, तो उसका मतलब ये कि रियल में समवेयर अराउंड 19-20 होगा। द ह्यूमिडिटी वॉज एट 86%, सो वेरी ड्यूई टूडे। काफी ज्यादा शबनमी सी ये एक सुबह थी है और सी ब्रीज ब्लो कर रही है। यस, वेरी अनलाइक जनवरी, बट ये मौसम में एक तब्दीली है जो कि तकरीबन 2-3 दिन हम एक्सपीरियंस करेंगे और फिर उसके बाद कराची में विंटर का आखिरी फेज जो है उसका आगाज होगा जैसे कि आपको प्रेडिक्ट किया गया था। तो कुछ वैसी ही ये सुबह है। प्रोग्राम में इफ यू विश टू पार्टिसिपेट, अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पे तो यू कैन फॉलो मी एट अदील अंडरस्कोर अज़र, दैट्स ADEEL अंडरस्कोर AZHAR। Alright, so here we are, और आप लोग के ट्वीट भी मेरे सामने खुल चुके हैं और जरा हम आगे प्रोग्राम में क्या क्या बातें करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। बिकॉज वील टॉक अबाउट फॉर श्योर जो बाइडन साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी हुकूमत को एक साल मुकम्मल हो गया है और अपने पहले साल मुकम्मल होने को मार्क करने के लिए जो है वो जो बाइडन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, ये इट हैज हैपेंड एट द टाइम वेन जो बाइडन साहब की जो अपनी मकबूलियत है वो बिल्कुल रॉक बॉटम टच कर गई है। तो इस पर जरा आगे चल के जो है हम प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। उसके अलावा और भी हमेशा की तरह टॉपिक क्रिप्टो का भी आज भी जिक्र हो सकता है। हमने कल भी क्रिप्टो के हवाले से बात की थी, आज हम यूरोप के हवाले से जो है वो कुछ क्रिप्टो का जिक्र जो है वो प्रोग्राम में जरूर हो सकता है। बिकॉज ऐसा मुझे लग रहा है कि दुनिया भर के ममालिक ने जो है वो अब डिसाइड कर लिया है कि क्रिप्टो के खिलाफ कम से कम क्रिप्टो को, या तो देखें क्रिप्टो अगर इस मंझधार से निकल गया ना तो या तो वो अच्छी तरह रेगुलेट हो जाएगा या फिर उस पर काफी बुरा वक्त आने वाला है। चलें जी आगे चलते हैं और यह सीन है, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं। आज का पहला मैसेज हमें फरी ने किया, गुड मॉर्निंग कहती हैं, आप एक गाने की जो है ना वो फरमाइश कर रही हैं काफी दिनों से, एक बहुत पुरानी गजल है जिसका मैंने जिक्र भी किया था, आप डेडिकेट करना चाहती हैं अपने फादर को who left you in 2014 and he was your mentor and inspirational hero. So, bilkul kabhi na kabhi inshallah ye ghazal hum zarur apne program mein chalayenge. Okay, and then Faraz kehte hain, salam from Qatar. The first ticket sale of FIFA World Cup Qatar 2022 starts with the random selection draw sales period on 19 January. Yani pehle tickets jo hain wo allocate ho gaye hain and I'm pretty sure Faraz you will be getting the tickets for one of the matches as well. So yeah, go out people living in Qatar, amazing opportunity yaar, world cup apne samne hote hue dekhna, awesome. Asim Mansoor sahab, zabardast, thank you, kal aapne machli ka nashta, nahi nashta nahi kiya, aapne dinner kiya hoga to tasveer bhi aapne bheji hai, thank you for sharing. Okay, and then Ehsan Yunus ne CNN ki khabar share ki hai, President Biden, bilkul Vladimir Putin को कल जो है उन्होंने धमकी दिया, तो हम ना हम बाइडन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एसन उस पर जरा तफसील से नजर डालेंगे, जो क्योंकि चीदा चीदा नुकात क्या थे जिसमें ज़ाहिर इकोनॉमी की बात थी लेकिन रूस के हवाले से उन्होंने काफी ज्यादा बात की थी। बिकॉज ये रूस के तेवर जो है ये काफी खतरनाक लग रहे हैं इस वक्त और ईस्टर्न यूरोप में, मशरकी यूरोप में जो है वो इस वक्त एक ये क्राइसिस जन्म काफी हद तक ले चुका है एंड नोबडी इज श्योर व्हाट व्लादिमीर पुतिन इज अप टू। एसन कहते हैं, इट सीम रशिया विल एंटर यूक्रेन, हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट यूरोप एंड द अदर स्टेट्स दैट वर द पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। सर मुझे तो देखिए सिर्फ एक ही चीज की जो है ना वो परवाह है, और वो ये है कि ऑयल की प्राइसेस कहाँ पे जाएंगी. बिकॉज ऑयल की प्राइसेस जो है ना वो इन तमाम क्राइसिस से, देखिए याद रखिएगा, वो ऊपर ही जाएंगी. और अभी भी जो है ऑयल की प्राइसेस आप देख लें कि जो ब्रेंट है वो तकरीबन कोई $88 पे जो है वो पहुंचा हुआ है, और बड़ी परेशान कुन ये सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के हवाले से. सो बाकी रूस यूक्रेन के साथ क्या करे, क्या होगा उसमें, वो सप्लीमेंट्री बातें, हमें तो अभी जरा खुदगर्ज़ होके अपने बारे में सोचना पड़ेगा. क्या ख्याल है हसन? फैजान हयात कहते हैं तू झूम बाय आबदा परवीन एंड नसीबो लाल इन कोक स्टूडियो गॉट मोर देन 8.7 million व्यूज, मोर व्यूज देन एवरी सॉन्ग ऑफ सीजन 13. इट इज सेफ टू से दैट CS14 वुड बी अ ब्लॉकबस्टर. या फॉर श्योर CS14 इज ऑफ टू अ वेरी ब्लॉकबस्टर स्टार्ट. और तू झूम वाज़ा गाना एक इस तरह का कलाम था जिसको सुन के आपको अंदाजा हुआ कि वो जो कोक स्टूडियो, दिस इज व्हाट कोक स्टूडियो, दिस इज व्हाट कोक स्टूडियो वाज़ सपोज्ड टू बी लाइक. वो ऐसे ही होना था, और कोक स्टूडियो को जो है वो ऐसे ही गाने प्रोड्यूस एक जमाने में किया करता रहा जिसको वाकई हम जो है सुन के झूम जाया करते थे. लेकिन आजकल जरा उसमें कुछ किल्लत पैदा हो गई थी, कुछ इस तरह के सॉन्ग्स जो है वो निकल के नहीं आए. लेकिन अब काफी अरसे बाद एक इस तरह का गाना आया है, तो यस पीपल आर एंजॉइंग दिस एंड उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. अच्छा, इसके अलावा ये भी आपको पता है कि इस गाने के हवाले से कॉन्ट्रोवर्सी भी जो है वो सामने आ गई है, जिसपे जाहिर है काफी बातचीत हो रही है. अब देखते हैं जी कि वो मामलात कहां तक आगे जाते हैं. सैयद नुमान अली जाफरी कहते हैं वांटेड टू रिमाइंड यू ऑन डिस्कशन रिलेटेड टू टर्की, यू वांटेड टू टॉक ऑन इन मंडे बट अनफॉर्चुनेटली द टाइम डिडंट अलाउ यू टू डू सो, प्लीज शेयर योर थॉट्स पॉसिबल टुडे. अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है मैंने मुख्तसरन तो नुमान इस पे तुर्की के हवाले से जो है वो बात कर ली थी, और मैंने ये कहा था कि तुर्की का सेंट्रल बैंक जरा डिसीजन ले ले इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो फिर हम इस पर तफसीली बात कर लेंगे. तो अभी मेरे ख्याल से आज उनको शायद उनका सेंट्रल बैंक की जो है वो मीटिंग है, तो वो उस पर डिसीजन लेंगे. तो मेरे ख्याल से तब ज्यादा बेहतर होगा और समझ में आएगा कि मिस्टर रचब तैयब एर्दोगान जो है क्या वो अपनी स्टबन जो पॉलिसीज हैं, उनकी जो जिद्दी इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पर वो कायम रहेंगे या क्या होगा सिलसिला. तो लेट्स वेट मे बी नुमान फॉर वन मोर डे एंड लेट्स सी व्हाट द टर्की सेंट्रल बैंक. पहले मैं चेक कर दूं टर्की सेंट्रल बैंक की मीटिंग हो कब रही है, तो उसके बाद फिर मजा तब आएगा ना जब उनके फैसले के बाद हम कुछ डिस्कशन कर सके. क्या ख्याल है? शैला अकील कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलीशबा अली मीसम, इट्स वेरी क्लाउडी एंड चिली इन लाहौर. वाओ दैट्स प्रीटी कूल बिकॉज कराची इज एंटायरली डिफरेंट. कराची के मौसम का नक्शा तो जो है मैं आपके सामने खींच ही चुका हूँ. यूसुफ नवाब कहते हैं आदाब अर्ज़े भाई, थैंक यू. डॉक्टर जीशान कहते हैं सेलिब्रिटीज, आपने एक बेसिकली इमेज डॉन की जो है वो एक खबर शेयर की है जिसमें ये फैसल जावेद साहब, जो सेनेटर फैसल जावेद साहब हैं, उन्होंने बेसिकली बताया ये है कि पाकिस्तानी सेनेट में एक रेजोल्यूशन पास हुई है यूनानिमसली, और जिसमें बेसिक बात ये की गई है अबाउट द रॉयल्टीज़. ओके जी, ये दुनिया भर में ये रॉयल्टीज़ जो है ये दी जाती हैं एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को. फर्ज करें कि जी आपने एक बार एक ड्रामे में काम किया, ठीक है जी, जैसे PTV में ये टिपिकल सी बात है ना, आपने एक बार एक ड्रामे में काम किया, यू गेट पेड एक्स अमाउंट फॉर दैट. बट व्हाट इफ ये ड्रामा नशर मुकर्रर के तौर से जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है या रिपीट होता रहता है, ये सारा सिलसिला होता है, व्हाट अबाउट दैट? बिकॉज जो 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 वो है जो चैनल है जिसने ये प्रोड्यूस किया है या वो प्लेटफॉर्म जिसने ये प्रोड्यूस किया, बिकॉज अब तो चैनल वाली कहानी भी नहीं रही है ना, अब तो आपको पता है कि नेटफ्लिक्स वगैरह के बाद ये सारी चीजें, तो ये जब दोबारा रीरन होता रहेगा तो फिर दे मेक सर्टन मनी आउट ऑफ दैट एज वेल. सो व्हाट अबाउट द रॉयल्टीज दैट आई गेट? सिमिलरली दिस इज द केस इन म्यूजिक एज वेल. यानी म्यूजिक में भी जो है वो ये वाली बात आती है कि आप मैं आपका, जैसे पाकिस्तान में एक जमाने में ये चीज शुरू हुई थी कि उसमें ये बात हुई थी कि भाई ये जो FM चैनल्स हैं, ये जो मजे से म्यूजिक चला रहे होते हैं, फ्री में चला रहे होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है. यू हैव टू बाय द राइट्स फॉर दैट म्यूजिक. आपको उस म्यूजिक के हुकूक जो है, जुमला हुकूक पहले लेने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद ही आप जो है वो ये चला सकते हैं इन गानों को. तो एक पाकिस्तान में एक जमाने मूवमेंट शुरू हुई थी, मुझे याद है कि इंडिया की जो टी सीरीज के गाने जो हैं वो पाकिस्तान में एक कंपनी ने उसके राइट्स ले लिए थे. उन्होंने बाकायदा लीगल नोटिसेस भेजे थे बहुत सारे चैनल्स को के ये FM चैनल्स को, क्योंकि हम उस वक्त समा FM हुआ करते थे और हमारे पास बाकायदा राइट्स हुआ करते थे टी सीरीज के गाने चलाने के हवाले से, बाकी किसी चैनल के पास ये राइट्स नहीं होते थे. FM चैनल्स का ये मौकफ था कि जी हम इतने रेजर थिन मार्जिन पे काम करते हैं कि अगर हम गानों की रॉयल्टी पे करना शुरू कर दें तो फिर हमारे पास तो कुछ देने के पैसे ही नहीं बचेंगे. लेकिन दुनिया भर में ये रॉयल्टी वाला सिलसिला होता है. तो पाकिस्तान में एक कानून ये मंजूर हो गया जिसके तहत जो है वो अदाकारों को ये रॉयल्टी मिलेगी. और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अदाकार हैं, मैं इस वक्त ट्वीट देख रहा हूँ अदनान सिद्दीकी साहब के, हुमायूं सईद साहब का, और इसके अलावा रमशा खान है, रमशा खान ठीक है, एंड मिकाल जुल्फकार, ये दे ऑल अली सफीना, और क्या बात है यार, दे ऑल सीम वेरी हैप्पी अबाउट व्हाटएवर हैज हैपेंड, और दैट्स प्रीटी गुड. एंड यस, फखरे आलम इज एब्सोल्युटली राइट, दिस इज समथिंग दैट शुड हैव हैपेंड लॉन्ग टाइम बैक. सो पाकिस्तान के जितने अदाकार और अदाकारा हैं वो इस हवाले से खुश होंगे. हुमायूं सईद कहते क्या हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीवी फिल्म फ्रेटर्निटी, सेनेट पाकिस्तान इज यूनानिमसली पास रेजोल्यूशन विद द ऑब्जेक्टिव टू एम्पावर कॉपीराइट बोर्ड टू फिक्स रॉयल्टीज फॉर लाइसेंसिंग एंड असाइनमेंट ऑफ वर्क एंड इंश्योर पेमेंट्स टू द आर्टिस्ट. थैंक यू मेंबर्स ऑफ द हाउस. चलें जी, दैट्स गुड, एवरीवन इज हैप्पी. लेकिन जाहिर है इसमें जो एक और पॉइंट है वो ये है कि क्या, और इस आर्टिकल में ये पॉइंट जो है उठाया गया है जो कि डॉक्टर साहब ने शेयर भी किया है हमारे साथ, आर रॉयल्टीज जस्ट फॉर एक्टर्स और राइटर्स एंड डायरेक्टर्स हु एक्चुअली क्रिएट द आर्ट विल ऑल्सो बेनिफिट. अच्छा, वो वैसे भी कह रहे हैं कि जो राइटर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं या उनको भी, मेरा तो ये ख्याल है कि इसमें सबको जो है वो इसका एडवांटेज मिलना चाहिए. तहसीन अमजद, थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने गुड मॉर्निंग सबको भेजा है. सफदर खान ने एक खबर शेयर की है डॉन की, जो कि पब्लिश हुई है ऑन द 15th, आज से 5 दिन पहले, और ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद हैं, एक प्रोफेसर हैं, जॉर्ज मेसन कॉलेज, जो कि आई थिंक इट्स इन वर्जीनिया यूएसए. और बेसिकली ये साहब, ये मैं आर्टिकल ना, ये बल्कि मैं रीट्वीट भी कर देता हूँ, और इन साहब ने प्रिडिक्ट ये किया है, ये वो प्रोफेसर साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर ग्रेगरी स्टैंटन. और डॉक्टर ग्रेगरी स्टैंटन जो हैं, ही वॉज द वन हु प्रिडिक्टेड द जेनोसाइड इन रवांडा. ओके, ये अच्छा, वो ये कहते हैं, अभी मैं रवांडा पे हम बाद में बात कर सकते हैं, या अभी मैं मुख्तसरन पे 2 मिनट बात कर लूंगा, बट इन साहब ने कई सालों पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया था दैट रवांडा में एक जेनोसाइड होने वाला है, यानी एक नस्ल कुशी होने वाली है. उन साहब का ये कहना है कि मुझे वही कंडीशंस इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ होती हुई नजर आ रही है, यानी वही वाकया मुझे रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है मुसलमानों के साथ. ये डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ग्रेगरी स्टैंटन ने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था जेनोसाइड वॉच, यानी नस्ल कुशी पर नजर रखने वाला. उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान में मुसलमानों को जिस तरह मार्जिनलाइज किया जा रहा है एज पर अ स्टेट पॉलिसी अंडर नरेंद्र मोदी, इट कैन बी कंपेयर टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, यानी मुल्क में अकलियत से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद थे, जिस तरह रवांडा और म्यांमार में उनके साथ हुआ था. म्यांमार में हमें पता है जो रोहिंग्या क्राइसिस, हमें पता है जी वहाँ किस तरह उन बेचारों को जो है लाखों की तादाद में, बल्कि मिलियंस की तादाद में मुल्क से जो है वो बेदखल कर दिया गया. तो ये रवांडा, ये म्यांमार तो हमारे सामने ही है, रवांडा थोड़ा सा पुराना हो गया. तो ये तकरीबन कहते ही हैं कि जी ये बिल्कुल वही कुछ हालत हजार मोदी जो है वो ये कर रहा है, और एज अ स्टेट पॉलिसी इसको किया जा रहा है. वर्चुअल इम्प्यूनिटी मिली हुई है ऐसे लोगों को जो कि मुसलमानों के जेनोसाइड्स की जो है वो बातें कर रहे हैं. बल्कि बात तो यहाँ तक आ गई है कि अमरीका में जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो अमरीका में बैठ के ये बातें कर रही हैं कि मुसलमानों का जो है वो नरसिंहार कहते हैं, मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, ये जेनोसाइड जो है ये होना चाहिए. अच्छा, अब सिचुएशन ये आती है कि रवांडा की जरा हम बात कर लेते हैं मुख्तसरन, मैं 2 मिनट आपको बताता हूँ. ये 1994 का वाकया है. रवांडा एक मशरकी अफ्रीका में ये एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा खूबसूरत सा मुल्क है, लेक विक्टोरिया का आपने नाम सुना होगा, उसके साहिल पर ये मुल्क जो है ये वाकया. और 1994 में यहाँ पर एक बदतरीन एक फसादात फूट पड़े थे, और बदतरीन फसादात जो ये फूटे थे वो हुआ ये था कि मुल्क में जो मेजॉरिटी थी, जो यहाँ पे 2 मेन कबीले रहते थे, एक थे हुटूस और एक थे टुट्सीस. तो ये जो हुटूस थे ये मेजॉरिटी में थे, और ये टुट्सीस जो थे ये माइनॉरिटी में थे. तो ये हुटूस ने जो है वो टुट्सीस का जिसे कहते हैं कि एक तरह का उन पे हमला किया था, और उनको लिटरली उनकी जो है वो एक नस्ल कुशी जो है वो कर दी थी. और उस वाकये में मिलियंस के करीब जो लोग हैं वो जान से हाथ धो बैठे थे, और बहुत बड़ी तादाद में जो टुट्सीस थे उनको अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़ा था. उनको वो बन गए थे रेफ्यूजीज जो हैं वो बन गए थे. ये बहुत ही खौफनाक वाकया था, और इंसानी तारीख के बदतरीन जो जेनोसाइड्स के वाकयात हुए हैं एटलीस्ट इन द रीसेंट हिस्ट्रीज, उसमें से वो ये एक वाकया था. 1994 में ये वाकया हुआ था. मुझे याद है दैट सम टाइम इन मिड 90s वी वेंट टू केनिया, और क्योंकि हुआ ये था कि इतनी बड़ी तादाद में इंसानों को कत्ल करके जो है वो लेक विक्टोरिया में उनकी लाशें डाल दी जाती थी, तो मछलियाँ जो है ना वो इंसानी लाशें, ज़ाहिर है इंसानी गोश्त जो है वो खा लिया करती थी. तो उस ज़माने में ये बात भी की जाती थी कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ की मछलियाँ खाना लेक विक्टोरिया की छोड़ दी थी, बिकॉज दे फेड ऑन on human flesh and all. So बहरहाल ये वाकया मैंने सुना था because I went to Kenya in that during that time. ये बहुत खौफनाक वाकया था और इसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस जेनोसाइड में लोगों को उकसाने का, वो रवांडा की नेशनल रेडियो ने किया था. रेडियो रवांडा, आपको शायद पता हो किस नाम की एक फिल्म भी बनी थी. तो ये रेडियो रवांडा जो है इसने वही रोल प्ले किया था हूटूस को उकसाने का अगेंस्ट द टुट्सीज, जो कि इस वक्त इंडियन मीडिया प्ले कर रहा है. यानी इंडियन मीडिया अगर आप देखेंगे उसमें शदीद एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स है. मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि यार जिस तरह हमारे यहाँ पैमरा मौजूद है, पैमरा में आप लाख खामियाँ निकाल सकते हैं लेकिन इस तरह की चीज़ों के हवाले से यू कांट इमेजिन के पाकिस्तान में ये चीज़ें हम चला सकते हैं. बट जिस तरह फेवर किया जाता है राइट विंग हिंदू थॉट को इंडियन मीडिया में, आई मीन ऑफ कोर्स लेड बाय दिस बावला, ये बावला जो है क्या नाम है, अर्नब गोस्वामी एंड ऑल, वो तो खैर एक लेवल है. उसके अलावा भी यार मुकेश अंबानी का जो चैनल है अपने टीवी 18 क्या नाम है उसका, यार उसमें जिस तरह के प्रोग्राम्स, जिस तरह के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं, जिस तरह की पार्टिजान कवरेज होती है, आप हैरान रह जाते हैं. तो वो जो रेडियो रवांडा वाला रोल है वही रोल जो है वो इंडियन मीडिया से मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर रहा है. तभी आप देखें रोजाना ही कोई वीडियो आपको नजर आ रही है कि जिसमें मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, उनको उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं. अभी आपको साथ मैंने वीडियो शेयर की थी, एक कपल को जो है वो ट्रेन से निकाल के फेंक दिया गया था इस वजह से, कहा था कि ये लव जिहाद वाला सिलसिला चल रहा है. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग खबर जो आपने सफदर साहब शेयर किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड या सो यू गाइज कैन गो एंड रीड अबाउट द रवांडा जेनोसाइड, यू गाइज कैन, इट्स अ वेरी पेनफुल एपिसोड इन ह्यूमन हिस्ट्री, सो वेरी सैड. जल्दी से कुछ और मैसेज बताता हूँ बिफोर आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग. अच्छा जी, इसके अलावा तहसीन अमजद कहते हैं IBA IOBM आर द सेम इंस्टीट्यूशन और सेपरेट इंस्टीट्यूशन इन कराची. यार ये जो है ना ये आप IBA वाले, यार ये आपने क्या बात, देखिए IOBM जो है ना, अच्छा ये जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात की जी हमारे दोस्त हसन इकबाल ने, जवाब दे दिया जी हाँ. IOBM जो है ये पहले CBM कहलाया जाता था, इसका कराची, इसका IBA से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है. शामीना नजान कहते हैं अंकल टुडे इज आवर फोर्थ बायएनुअल हिस्ट्री, प्लीज प्रे फॉर अस, वाओ माय फेवरेट सब्जेक्ट, देन बेस्ट ऑफ लक गाइस. एंड शामीर ये भी कहते हैं, आजान शामीर अंकल व्हाट अ विन फॉर साउथ अफ्रीका, इंडिया इज ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक इन साउथ अफ्रीकन सॉइल. या एब्सोल्युटली, यानी कल साउथ अफ्रीका ने कमाल, इस पे जरा तफसील से मजीद चल के बात करेंगे, बट दैट वाज अ ग्रेट विन, इनफैक्ट टर्न आउट टू बी अ प्रीटी कॉम्प्रीहेंसिव विन एज वेल. आई मीन दे विन बाय 31 रन्स, एंड में थोड़े से रन्स इंडिया ने जरूर बना लिए, बट इट वाज अ कॉम्प्रीहेंसिव विन. एंड या इंडिया कुड लूज द ODI सीरीज एज वेल, लेट्स सी. ऑलराइट मुबशिर नसीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग that link with me. Yeah, it's a beautiful package on Shahnawaz Dahani. What a story he is. Peer Zaheer Saab, thank you so much. Sayyid Ali Hassan is listening to the show with Mubeen, IT engineer. Thank you so much. Sabko bahut bahut salam. Acha ji, iske alawa Saqib kehte hain, aaj kal mein kis mulk ki maishat ne aapko hairan kiya hai? Kis mulk ki maishat ne mujhko hairan kiya hua hai aaj kal? अगर माशी परफॉर्मेंस और अशारिये की बात की जाए, सो या आई थिंक आई हैव टू से चाइना हैज डन अ प्रीटी रीजनेबल एंड अ वेरी डिसेंट जॉब विदाउट डाउट. तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जिस तरह उनकी इकॉनमी अभी भी फल फूल रही है, मेरा ये ख्याल है कि या आई थिंक दे हैव डन, ये मुश्किल सवाल है वैसे, इस बारे में सोचना पड़ेगा मुझे. और एफ के नियाजी कहते हैं आजकल इंडिया की टीम को क्या हो गया है, जीतना भूल गई है. अभी तो स्टार्ट हुआ है, बता रहा हूँ मैं आपको. जावेद साहब गुड मॉर्निंग सर, मेनाज नवीद गुड मॉर्निंग टू यू. वलीद ने भी जो है वो इंजॉय की है साउथ अफ्रीका की बैटिंग को. इसके अलावा ब्रिलियंट डिस्प्ले बाय रासी फैंडर डूसन एंड टेम्बा बवुमा. ऑलराइट, ठीक हो गया जी, डन है. और उसके अलावा दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, व्हाट अ ब्रिलियंट पार्टनरशिप दैट वाज, व्हाट अ सेंचुरी बाय रासी फैंडर डूसन. यार ये बंदा मेरा बड़ा फेवरेट प्लेयर बनता जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ. उसके चेहरे पर जो एक एक डॉल्फ लुंडग्रीन वाली जो एक एक उसके लुक्स है ना, लाइक ही डजंट केयर वाला जो लोग है ना, आई डोंट केयर मैन, आई एम जस्ट गोना स्कोर रन्स, वो वाला सीन है उसके चेहरे पे, आप देखिए रासी फैंडर ड्यूसन. ओए होए होए. ऑलराइट जी, इसके अलावा फहीम अली खान, वालेकुम अस्सलाम. प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैंपेन इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ करप्ट सिस्टम इन विच एवरी इंस्टीट्यूशन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट, वॉट वुड बी द प्रेसिडेंशियल सिस्टम चेंज, प्लीज कॉमेंट. यार कल तो मैंने बात की थी यार इसके ऊपर फहीम भाई, लगता है आपने मिस कर दिया कल का डिस्कशन. ऐसा ही है ना. मोहम्मद अली रऊफ साहब, थैंक यू सो मच. हफीजुर रहमान साहब नाजमाबाद नंबर एक से मैसेज करते हैं. ओके जी, आई हैव हर्ड द न्यूज दैट ओल्ड करेंसी नोट्स ऑफ द फ्यू डिनोमिनेशन वुड बी कैंसिल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये बकवास बातें, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरें, इनको छोड़ दें, भूल दें. कोई करेंसी नोट अभी फिलहाल जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत मनसूख नहीं कर रही है. वो करेंसी के नोट्स वो होते रहते हैं कि भाई ये करेंसी का नोट हम नया डिजाइन लेकर आ रहे हैं तो आप पैसे वापस कर दें, वो वाली सीन हो जाएगी. लेकिन वो इंडिया वाली डीमोनेटाइजेशन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आयशा असमत, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अ वेरी फॉगी मॉर्निंग हियर इन लाहौर. ऑलराइट, चलो जी अब यहाँ पर रुक जाते हैं हम, बिकॉज मैंने बहुत बातें कर ली है. अब आपको सुना देते हैं हम एक अच्छा सा गाना. और अच्छा सा गाना तो प्ले लिस्ट भी नहीं देखी अभी तक यार मैंने तो. ऑलराइट ओके, ये वाला गाना आ गया है तो फिर इसको हम सुनी लेते हैं. Alright, this is Atif Aslam. Enjoy. मिलते हैं आपसे इसके बाद. Alright, that was Atif and there been Mayu. कैसे जिया? Hope you guys enjoy that song. ये गाना जब भी होता है प्लेलिस्ट में मैं चला देता हूँ उसको, मैं बगैर किसी, जैसे कहते हैं ना कि इंतजार के, I just play this. Alright, तभी नजर आया मुझे प्लेलिस्ट में, I just played it. Okay, then what have we got? यार सो सॉरी रहमान खिलजी एंड उनकी बच्चे उनके नाराज हो गए कि अदील अंकल को अब हम नाम लिख के भेज रहे हैं फातिमा एंड अब्दुल मुक्तदर, और उनका मेरा नाम ही पढ़ना भूल लिया उन लोगों ने. यार आई एम सो सॉरी यार, वो असल में आज मैसेजेस जो है ना वो सुबह काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ गए, और फिर वो जो एक डिस्कशन था ऑन रवांडा दैट रियली ट्रिगर्ड मी, मेरे जो याददाश्तें हैं उसको एकदम ना ट्रिगर कर दिया. यानी पता नहीं लेक विक्टोरिया की मछली नहीं खाएं एंड ऑल, मैं क्या करूं यार, मैं जरा इंफॉर्मेशन की रॉ में बह जाता हूं कभी कभार, एंड आई शुड नो वेयर टू पुट द फुल स्टॉप, बट क्या करें. आई एम सो सॉरी यार, सो सॉरी गाइस. ओके, अगर मैंने मैसेज मिस कर दिया और बच्चे जो हैं वो स्कूल पहुंच गए. सो ओके, जुल्फी कहते हैं लॉट्स ऑफ न्यू फेसेस आर सीन पोस्टिंग द हैशटैग फैन बेस इज इंक्रीजिंग. फैन बेस इज इंक्रीजिंग, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट एटलीस्ट ये जरूर हो रहा है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पहली पहली बार प्रोग्राम में मैसेज कर रहे हैं, वो सुन काफी अरसे से रहे थे. चले जी, खुर्रम साहब ने अपने नाश्ते की तस्वीर हमें भेजी है, थैंक यू सो मच. इसके अलावा जी बी शाह साहब पूछते हैं कि क्या लेट आने पर आपके पैसे मनहा के आपके पैसे जो हैं वो काटे जाते हैं या नहीं. तो भाई ऐसे आइडियाज ना दें इनको यार, क्या कर रहा हूँ मैं, फिर मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा, मैं पैसे वैसे नहीं आएंगे मेरे पास. अगर लेट आने पर पैसे कटने शुरू हो जाए मेरे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी. इस तरह की बातें ना किया करो यार. ओके एंड देन वी हैव गॉट, जल्दी जल्दी आते हैं और कौन कौन जल्दी. तनवीर सिद्दीकी कहते हैं खातून खाना का क्या हाल है, हमारी दुआ में आप सब लोग शामिल, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज डूइंग मच बेटर एट होम नाउ, अल्लाह का शुक्र एहसान है. इसके अलावा जुल्फी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, द प्रोटियस हैव बीटिंग द माइटी इंडियंस इन द फर्स्ट ओडीआई, इट्स गुड फॉर क्रिकेट दैट साउथ अफ्रीका इज फाइनली परफॉर्मिंग, बट स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे बिफोर दे कैन अटेन द स्टैंडर्ड वी यूज्ड टू एसोसिएट विद देम. यू आर एब्सोल्युटली राइट. एंड इसके अलावा मोहम्मद अब्बास कहते हैं गोइंग टू कॉलेज, दैट इज ग्रेट. पीर जही साहब कहते हैं लव टू सनराइज ग्रुप, अदील अदील लवर्स अदील लवर्स, ओके दे आर वंडरफुल, थैंक यू सो मच, आप लोगों की मोहब्बत है वो. तो बिलावर लवर ऑर्गेनाइजेशन मैंने सुना था एक ना, बी एल ओ. ओके भैया अभी लवर्स वाले लफ्ज हम रहने देते हैं, कुछ और कर लेते हैं. ओके आसिफ खान कहते हैं भाई ये मीशा शफी कौन सा केस जीत गई और कैसा. नहीं वो केस जीती नहीं है, वो तो आपको पता है मीशा शफी का केस जो है वो इस वक्त क्या चल रहा है. उन्होंने काउंटर सूट फाइल किया है अली जफर पे ऑफ डेफेमेशन. तो कोर्ट, अली जफर चाह रहे थे कि उसको रुकवा दें, लेकिन आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी है कि डेफेमेशन कोर्ट केस दायर किया जा सकता है. जो मैंने पढ़ा था, मुझे नहीं पता, वो जो मेन केस है जो कि एक और चल रहा है वो एक अपनी जगह अलग है, और उसमें आपको पता है कि वो मीशा का केस इतना कोई तगड़ा उसमें जा नहीं रहा है, और उन्होंने जो बयान दिया है अदालत में वो तो बड़ा एक अजीब अंगुश बदंदों कर देने वाला है. बट बहरहाल, गुलाम सरवर कहते हैं कल ग्रेट सिंगर महनाज की 9th डेथ एनिवर्सरी खामोशी से गुजर गई और हमें पता भी नहीं चला, इसलिए तो कहते हैं कि बस नाम रहेगा अल्लाह का. बेशक जी, इसमें कोई शक नहीं. उमेर बाबर कहते हैं इन ऑडियो कैसेट्स पाकिस्तान में ईएमआई थी रॉयल्टी वाली, आई थिंक. ओ यस, ईएमआई जो है वो अभी भी अपनी रॉयल्टीज में इन्फ्रिंजमेंट जो है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को काफ़ी ज़्यादा सख्ती से परसू करती है. और मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि कोक स्टूडियो वगैरह के साथ भी इनके कुछ फड्डे हुए थे, जिसमें कुछ गानों के हवाले से उन्होंने कहा था कि यार आपने ये गाना कैसे कॉपी कर लिया, बिकॉज इसके तो कॉपीराइट्स ईएमआई के पास हैं. बिकॉज ईएमआई वी नो इज वन कंपनी विच इज बिन देयर सिंस 1980s, और पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े, ये वो रिकॉर्ड लेबल था जिसने पाकिस्तान के जो खासतौर से अगर हम पॉप सिंगर्स वगैरह की बात करें एंड ऑल, जो शुरू के जमाने के थे उनके साथ उन्होंने साइन अप किया था, और उसकी रॉयल्टीज उनके पास अभी तक का जो कॉपी राइट्स हैं वो अभी तक हैं. और अगर कभी उसमें कोई इन्फ्रिंजमेंट होती है तो वो काफ़ी एक्शन में अचानक नजर आ जाते हैं. अली डार साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, सनराइज बहुत तंग है, स्टे होम ईट सूप हॉट फूड कोक स्टूडियो का सॉन्ग लगा दें. अच्छा भाई जबरदस्त, काफ़ी सारे कह रहे हैं. शुएब ने नहीं सुना यार वो गाना, मेरे पास है नहीं, वरना मैं आज चला जाता ये गाना सीरियसली. अच्छा जी, इसके अलावा मोहम्मद अजहर कहते हैं व्हाट अबाउट इंडियन इलेक्शन. इंडियन इलेक्शन नहीं, यूपी इलेक्शन, यूपी इलेक्शन पे बात करेंगे ना, अभी तो फरवरी के वो दूसरे हफ्ते में शुरू हो रहे हैं तो उस पर हम बात करेंगे. अरशद इमाम साहब ने एक शेयर किया है हमारे साथ लिंक. सर वैसे मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, ये गलत है ये कहना कि जी पाकिस्तान में टैक्स इसलिए बढ़ गया है बिकॉज सारी चीजों की कीमतें डबल हो गई हैं. नहीं, इसका इससे वैसे कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन है, थोड़ा बहुत लिंक है, जरूर है इससे. लेकिन ये कह जाना कि टैक्स रेवेन्यू सिर्फ बढ़ इस वजह से रहा है, नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है. टैक्स रेवेन्यू बढ़ने की बहुत सारी वजूहत हैं. कस्टम ड्यूटी में इजाफा हुआ है बिकॉज इम्पोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ी हैं आपकी. इसके अलावा पाकिस्तान के टैक्स नेट में ज्यादा लोग आए, ये बात मानने की है. सेल्स टैक्स अब बेहतर जमा हो रहा है, काफी ज्यादा बेहतर जमा हो रहा है. इनफैक्ट बहुत सारे रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया गया. महज ये कह देना कि सिर्फ चीजें की कीमतें डबल कर देने से जो है वो टैक्स बढ़ा है, सर ये थोड़ी सी जरा ज्यादा हो जाएगी. शाहीन ताहिर, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी. सलीम बाबर कहते हैं, अब्दुल रहमान हेयर, होप यू, नहीं, अब्दुल रहमान हेयर, होप यू आर डूइंग अमेजिंग. कैन यू टेल विच यूनिवर्सिटीज अलाउ अस टू स्टडी इन एनी एविएशन कोर्सेज? एविएशन कोर्सेज पढ़ने के लिए, यानी एविएशन से मुराद आप एरोनॉटिकल इंजीनियर वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह के हवाले से बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? सो भाई ये जरा बता दीजिए कि अब मुझे ऑनेस्टली इस वक्त तो ज़ाहिर है आई नो अबाउट पीएफ एकेडमी रिसालपुर, बट उसके लिए आपको ज़ाहिर है एज अ कमीशन फिर कैडेट बनना पड़ता है, वो जो उनकी एविएशन का जो एरोनॉटिकल वाला सिलसिला होता है. बट आर देयर यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान दैट एक्चुअली ऑफर डिग्री इन एविएशन? आई एम श्योर नस्ट इसमें कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहा होगा, बट किसी को अगर पता हो तो फिर वो ज़रूर बता दें. मैं ये अब्दुल रहमान का ट्वीट जो है ये रीट्वीट कर देता हूँ. अच्छा जी, इसके अलावा नवीद बेग साहब कहते हैं, रासी फांडर ट्यूसन लुक्स लाइक निकोलस केज. ये जबरदस्त लेकर आया भाई मार्केट में. उमेर खोकर, अच्छा जी, अदील अंकल, वलीद बिन उमेर गोइंग टू स्कूल फॉलोइंग एसओपीज, वेरी गुड, शाबाश बेटा, की फॉलोइंग दी एसओपीज. एंड देन फरी सरफराज सेज, वेरी इंफॉर्मेटिव अबाउट रवांडा जेनोसाइड. ओके, थैंक यू. एफ के नियाजी कहते हैं, भाई टेस्ट सीरीज वाला पेटिसन पीटरसन भी फैमिली के साथ मैच देख रहा था स्टेडियम में. जी हाँ, ही वाज वाचिंग द गेम बिकॉज कीगन पीटरसन जो है ही इज फ्रॉम द टाउन ऑफ पाल. ये जो पाल टाउन है जहाँ पे कल ये मैच हो रहा था, आई थिंक दूसरा ओडीआई भी जो है वो पाल में ही हो रहा है. वहाँ पे ही बिलोंग्स टू दैट टाउन. एंड यू नो पाल, यार मैं कल जब जिक्र कर रहा था उसका, परसों जिक्र कर रहा था, कल कर रहा था, मैं ये बताना भूल गया था कि नेल्सन मंडेला एक्चुअली, ये पार्ल बिकेम अ वेरी फेमस टाउन इन अर्ली 90s जब नेल्सन मंडेला का जो है वो रिलीज किया गया था प्रिजन से. और ही वाज, ही उनको जिस डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, उनको जिस जेल में रखा गया था, दैट एक्चुअली वाज आउटसाइड पार्ल इस टाउन के. सो ये काफी पॉपुलर हो गया था. ऑलराइट, चलें जी. विंग कमांडर मुदस्सिर साहब कहते हैं, पीएफ कीट एंड नस्ट आर ऑफरिंग डिग्रीज इन एविएशन मैनेजमेंट. देयर यू गो, थैंक यू सो मच मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया जी, खुश रहिए. इसके अलावा रेहान अलवी साहब कहते हैं, बोरिस जॉनसन ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज जॉब. वेल, ही इज फाइटिंग मैन, ही इज फाइटिंग. वैसे मानना पड़ेगा यार रेहान, कल अगर आपने बोरिस जॉनसन को अपने आप को डिफेंड करते हुए देखा होगा तो फिर आपने भी कहा होगा कि यार ये बंदे में दम है यार, सीरियसली अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये बंदा जो है ना अभी भी फाइट पुट अप कर रहा है. चलें जी, ओके, अभी ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आपके मैसेजेस को जो है हम रोकते हैं. राहिल उमर एक जल्दी से करता हूं जो, उफ सो सर्दियां और ये गाना, दैट्स ग्रेट. इसके अलावा काशिफ कहते हैं, ड्रॉपिंग माय किड्स ऑफ टू स्कूल, दे आर सेइंग हाय टू यू, स्पेशली आयशा फ्रॉम ग्रेड 6, हाउ कैन आई ज्वाइन लाहौर व्हाट्सएप ग्रुप? आपको हम लाहौर व्हाट्सएप ग्रुप में अभी लिंक भेज देते हैं सर. ओके, अरे मोहसिन का मैसेज आया है, कहते हैं, लॉस्ट माय दादी लास्ट नाइट व्हाइल आई एम इन आइसोलेशन, आई कैन नॉट विजिट होम, वेरी सॉरी टू हियर दैट. मोहसिन, आपकी दादी के इंतकाल के हवाले से, मोहसिन अकबर ऑफ कोर्स इज फ्रॉम द ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और उनकी दादी का इंतकाल हुआ है. और हम की मगफरत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन. और चलें जी, आप दुआ कर सकते हैं कम से कम अकेले में बैठ के वहाँ पे, बिकॉज यू आर इन आइसोलेशन बिकॉज ऑफ कोविड, एंड वी आर विशिंग यू अ क्विक रिकवरी एज वेल. ऑलराइट जी, इसके अलावा देन वी हैव गॉट माहीन राणा से, हेलो टू रोहान माय सन, हेलो रोहान, हाउ आर यू? इसके अलावा सलामुना भाई, ओके, बैदुल्ला जान अहमद जई, थैंक यू सो मच. मोहसिन अब्बास पाशा कहते हैं, डियर अदील अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स द सीन ऑफ डोंकी मीट फाउंड इन नॉर्थ कराची मैरिज हॉल? ये मैंने रीट्वीट कर दिया भाई, ये डोंकी मीट वाला, ये आ गया है कराची में भी, पहुंच गया डोंकी मीट. ओके, सुहेब आलम कहते हैं, अच्छा जी आपने तस्वीर शेयर किया, थैंक यू फॉर शेयरिंग द पिक्चर, माशाल्लाह काफी सारे क्रिकेटर के साथ की है, व्हाट इज द ओकेजन मेरे भाई, हो क्या रहा है ये बता दीजिएगा मुझे आप. तो इसके अलावा then we have got PSL anthem leaked. Okay, song तो अच्छा लग रहा है, आतिफ गा रहा है तो फिर तो गेम ही कुछ होगी जबरदस्त है. बट चलें जी, अभी हम जरा बात कर लेते हैं खबरों के हवाले से, तो देखते हैं जी क्या क्या खबरें हैं. कल साने है मरी की जो है वो रिपोर्ट अब प्रेजेंट की गई है. और यार ये अजीब अजीब किस्म के लोग हैं, तो पाकिस्तान का जो ये ब्यूरोक्रेटिक माहौल है ना, इस साने है मरी की रिपोर्ट इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं अहमद, आई मीन ये बुजदार साहब को, कि ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई उनको सरकारी तमगा भरा है उसने कारकर्दगी दिया जा रहा है. वो भाई शर्म की बात है यार, ये तो खामोशी के साथ तस्वीरें भी नहीं खिंचवाते इसकी, लेकिन बस वो ब्यूरोक्रेसी हमारी क्या कर सकते हैं. सानिया मरी की तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आला को पेश. असिस्टेंट कमिश्नर मरी समेत 15 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है. अब पता क्या होगा, ये 15 अरकान जो है ना ये कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से जाके ये इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लेंगे. चले एनीवे जी, सानिया मरी की तहकीकाती कमेटी ने वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी है जिसमें इंतजामिया की गफलत और कोताहियों की निशानदेही की गई. इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उस्मान मुजदारा कहना था कि 15 अफराद के खिलाफ अफसरान के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया है. कमिश्नर रावलपिंडी को ओहदे से हटाने की भी सिफारिश की जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मरी को ओहदे से हटा दिया गया है. अच्छा जी, चलें ठीक हो गया जी. एंड देन अब देखते हैं इससे लॉन्ग टर्म में क्या फर्क पड़ता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन. वजीर आजम साहब का बयान आया है, कहते हैं जी कोरोना की पांचवी लहर का सामना है लेकिन कारोबारी मराकज बंद नहीं करेंगे. अच्छा, इससे मिलता जुलता बयान जो है ना वो कल जो बाइडन साहब ने भी जो है वो दिया है. और जो बाइडन का भी ये कहना है कि वी आर फेसिंग अ सीवियर कोविड वेव लेकिन अब अमेरिका जो है वो लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएगा. तो उन्होंने बड़ा क्लियरली जो है वो इस चीज़ के हवाले से बोल दिया है. जो जिस कम अज़ कम वही एहसास या वही ख्याल जो हैं वो अभी इन्होंने भी बताए हैं. मैंने ऐसे आपको बताया था कि अमेरिका में जो कोविड की वेव है वो उसमें एक बार फिर से जरा थोड़े से केसेस में अमेरिका में साइक्लिकल केसेस आ रहे होते हैं लेकिन अगर आप 7-day मूविंग एवरेज देखेंगे सो द कर्व हैज स्टार्टेड टू फ्लैटन अ बिट नाउ. बट लेट्स सी, फ्लैटन हो गई है कम से कम, वो बढ़ नहीं रही है कर्व. ठीक है, मैं मूविंग एवरेज के हवाले से बात करता हूँ. डॉन को देखता हूँ जी. डॉन क्या कहता है, डॉन का कहना है ऑपोजिशन सीज कैंपेन बिहाइंड एमरजेंसी रूमर्स. ओके अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं सब पाकिस्तान में बाकायदा मैंने सुना है टेलीविजन टीवीसी आना शुरू हो गया, एक टेलीविजन कमर्शियल आना शुरू हो गया है इस प्रेसिडेंशियल निजाम के हवाले से. फवाद चौधरी साहब, ही टर्म्स इट एज अ पार्ट ऑफ द फेक न्यूज कल्चर. ओके ठीक हो गया. एक्स जीबी एक्स जज राणा शमीम क्लेम्स एफिडेविट मेंट टू सेट रिकॉर्ड स्ट्रेट. Terms IHC's decision of framing charges against him as being against the principles of fairness and justice. All right, ये राणा शमीम साहब का बयान आया है. कहते हैं कि जी वो रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहते थे. अच्छा, आपको पता है कि जी उन्होंने वो कहते हैं उन्होंने जो बयान दिया अदालत में कि जी वो उनकी जो मरहूमा बेगम थी उनकी रूह को वो जो है ना तकवीत देने के लिए, बिकॉज वो एक वो थी जिनका इंतकाल दायरे हो गया था जो कि ऐनी शाहिद थी इस वाक्य की. उन्होंने जो है ना वो ये लिख के एफिडेविट अपने उसमें रख दिया था, सेफ में रख दिया था, वॉल्ट में, और कहा था मेरे इंतकाल के बाद रिलीज कर देना. बहरहाल वो रिलीज हो गया और उसमें आपको पता है कि इस वक्त जंग ग्रुप और इनके दरमियान ये लफड़ा जो है चल रहा है जो कि काफी पब्लिक हो चुका है. पार्लियामेंट्री पैनल अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस आयशा मलिक एज द सुप्रीम कोर्ट जज. जाहिर जी आप जानते हैं कि पाकिस्तान का ये एक बड़ा जबरदस्त और एक यूनिक वाकया हुआ है. खातून जज जो है वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस का हिस्सा बनेंगी. सो जस्टिस आयशा मलिक फ्रॉम द लाहौर हाई कोर्ट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट. सो या अभी जो आखिरी मेरे ख्याल से इसकी कागजी कार्रवाई वगैरह है ये भी अब तकरीबन पूरी हो चुकी है. ओके जी, एनसीओसी स्कूलों में हाजिरी 50% तक करने समेत मुख्तलिफ पाबंदियों का फैसला कर दिया गया है. आउटडोर गैदरिंग, इंडोर गैदरिंग तो फिलहाल बंद करने की बात की गई है. आउटडोर गैदरिंग को भी रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई है और ये सारा सिलसिला जो है ये हो चुका है. डॉक्टर फैजल सुल्तान का ये कहना है कोरोना बढ़ गया तो हंगामी सूरत हाल हो सकती है. वैसे कोरोना तो अभी बढ़ रहा है और कोरोना का आज का भी जो कोविड का एनसीओसी ने नंबर दिया है जाहिर है वो नंबर जो है वो परेशान कुन है जाहिर है. और बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर मैं गलती पढ़ना हूँ तो नंबर ऑफ टेस्ट के हवाले से अगर आप बात करें सो वी हैव क्रॉस 10%. आई थिंक 11.7% वॉज द पॉजिटिव 11.55% पॉजिटिविटी रेशो आया. 6,808 केसेज सिंगल डे में रिपोर्ट हुए हैं और नंबर ऑफ डेथ्स वर 5 एंड द पेशेंट्स ऑन क्रिटिकल केयर इज 918. तो 10 अफराद का इजाफा हुआ है ऑन क्रिटिकल केयर. मैंने कुछ दिनों पहले ये ट्वीट किया था दैट अस पाकिस्तानीज जो हैं वो हम ये देख लें कि दे शुड गेट यूज टू विद 15,000-20,000 डेली केसेस. जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर ऑफ डेथ्स. राइट राइट, चलें जी, ग्रेट. अभी हम ऐसा करते हैं कि आपको हम लिए टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने वापस आके खेलों के हवाले से हम बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों. प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा जी, थैंक यू सो मच हारून रशीद साहब एंड गुड टू सी योर रेगुलर पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम सर. अच्छा जी, आपने बताया कि एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है वो भी एविएशन कोर्सेज ऑफर करती है. चलो माई फ्रेंड, Abdul Rahman, you have got lots of universities to choose from, and I'm sure universities bekarar hongi aapko ek baar fir se aapko lene ke liye aviation ke courses mein. All right, good luck to you, mate. Aaj jaldi se baat karte hain khelon ke hawale se. Let's start with cricket. Aur cricket mein hum baat karte hain India versus South Africa series. Pehla match, usme South Africa ne kamyabi hasil ki और 31 रन से उन्होंने ये मैच अपने नाम किया. फॉल में ये मैच खेला गया. पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 296 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे. बोलिन पार्क फॉल में बहुत ज्यादा रन बनाए नहीं जाते. दिस टेंड टू बी अ प्रीटी स्लो विकेट. आई थिंक जिसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल था वो शायद 220-222 रन ही था. तो अगर ये देखा जाओ साउथ अफ्रीका द सॉर्ट ऑफ स्टार्ट दैट दे गॉट ऑफ टू, एक मौके पे साउथ अफ्रीका के जो है वो तीन खिलाड़ी आउट हो गए थे 68 रन पर, जब एडियन मार्करम जो है वो रन आउट हुए थे. लेकिन उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त 204 रन की पार्टनरशिप थेम्बा बावुमा और रासी फैन डर ड्यूसन के दरमियान रही. दोनों खिलाड़ियों ने जो है वो सेंचुरियां जोड़ी. और इसके अलावा उसमें रासी फैन डर ड्यूसन ने तो कमाल बैटिंग का मुजाहरा किया. 96 गेंदों पे 129 रन बनाए और नॉट आउट रहे. 4 छक्के और 9 चौके उनकी इस इनिंग में शामिल थे. कप्तान थेम्बा बावुमा ने 110 रन बनाए 143 गेंदों पे. नाउ अ वेरी रमीज राजा सॉर्ट ऑफ एन इनिंग दैट ही प्लेड, बट द इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट कि इन दोनों ने ऐसे मौके पर जब लग रहा था कि यार ये इंडिया इज मेकिंग द इनरोड्स, इन दोनों ने इस टीम को जो है वो बहुत अच्छे टोटल तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया. सो इंडिया की अगर हम बॉलिंग पे नजर डालें तो दो खिलाड़ियों को आउट किया जसप्रीत बुमराह ने और एक विकेट हासिल की रविचंद्रन अश्विन. और मैंने आपको बताया कि मार्करम जो है वो रन आउट हुए थे. जवाब में अगर हम बात करें तो इंडिया वर ऑफ टू अ डिसेंट स्टार्ट. देयर वाज अ टाइम जब 138 रन पे इंडिया का सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ हुआ था, जिस वक्त शिखर धवन और साबिक कप्तान विराट कोहली के दरमियान जो है वो एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी और लग यही रहा था दैट इंडिया विल बी एबल टू कंफर्टेबली रीच दैट टारगेट. लेकिन फिर उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट डिसमिसल हुआ. इम्पॉर्टेंट विकेट हासिल की शिखर धवन की केशव महाराज ने, जिन्होंने उनको बोल्ड किया. और ये जो था आई थिंक इस मैच का टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज थोड़ी देर बाद ही जो है वो विराट कोहली भी आउट हुए. विराट कोहली ने 51 रन बनाए. सो जिस किस्म की फॉर्म में कल विराट लग रहे थे, लग यही रहा था कि अगर ये मैच आखिर तक लेकर जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट विराट इज अ वंडरफुल आई मीन इज ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू चेजिंग. लेकिन वाकई यार कल जो है ना, अब ये थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि वो जो एक एक्स फैक्टर था विराट कोहली का, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डिसिप्लिन वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है. और ये कल का जो मैच था ना वो परफेक्ट कंडीशन थी विराट कोहली के लिए कि ही वुड स्टे देयर एंड ही वुड सी हिज टीम थ्रू. एंड उस दौरान विराट कोहली एक सेंचुरी भी स्कोर कर ले. दैट वाज आई मीन दैट इज द सॉर्ट ऑफ विराट कोहली वी न्यू ना. बट नो, आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. आई डोंट नो, मे बी. आई मीन जस्ट अभी कहना कुछ मुश्किल है. अच्छा, बस विराट का आउट होना था, फिर उसके बाद जो है खुद तबातुर के साथ इनकी विकेटें गिरती रही. कोई और खिलाड़ी अच्छी बैटिंग नहीं कर सका. ऋषभ पंत ने 16 बनाए, श्रेयस अय्यर ने 17, वेंकटेश अय्यर जो है माशाल्लाह बड़े अय्यर आ गए. आपको पता ना इनकी साउथ इंडियन कास्ट है ये अय्यर. ऑल राइट, हाँ अय्यर याद आया वो सीन. ऑल राइट, इसके अलावा वेंकटेश ने 2 रन बनाए एंड रविचंद्रन अश्विन ने 7 रन बनाए. एंड में श्रद्धुल ठाकुर ने कुछ रेजिस्टेंस जरूर शो की. 43 गेंदों में 50 रन उन्होंने बनाए, बट ऑनेस्टली इट वाज जस्ट टू लेट. काफी उस वक्त जो था वो दूर था. ये रॉबिन सिंह टाइप इनिंग उन्होंने जो है खेली. बाला जसप्रीत बुमराह नॉट आउट रहे 14 रन पर. सो इस तरह जी 2 विकेटें हासिल की लुंगी एंगिडी, 2 तबरेज शमसी एंड 2 एंडी फेलुकुवायो. सरफराज के दोस्त ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया और ठीक हो गया जी. चलें ये हो गई बात जी. तो दे हैव गॉट अ 1 मैच लीड नाउ. और अब क्या सिलसिला है कि इंडिया साउथ अफ्रीका के दरमियान जो दूसरा ओडीआई मैच होने वाला है वो कल खेला जाएगा. वही 1:30 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे वो मैच का आगाज होगा और ये मैच भी खेला जाएगा फॉल में. ऑलराइट, इसके अलावा अंडर 19 वर्ल्ड कप के हवाले से जरा हम बात करते चलें जी. इंडियन टीम को जो है ना वो काफी उसके हवाले से परेशानी का सामना, बिकॉज काफी सारे इंडिया के जो है वो खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं अंडर 19 में. इवन दो इंडिया ने कल बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्होंने आयरलैंड की टीम को 174 रन से शिकस्त दी, लेकिन कहते ये हैं जी इंडिया के जो कप्तान हैं वो और इसके अलावा 5 अदर खिलाड़ी जो हैं ये बेसिकली मैच में शामिल नहीं हो पाए थे, बिकॉज ये सब कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए थे. उसके बावजूद इंडिया पुट अप अ ग्रेट शो यस्टरडे और कल का वो मैच अपना जीतने में कामयाब भी हुए थे. Alright जी, अगर हम मजीद मैचेस के हवाले से बात करें, आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान जो है वो कब एक्शन में नजर आने वाला है. तो पाकिस्तान का मैच आज होगा अगेंस्ट अफगानिस्तान और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 6 बजे खेला जाएगा. Alright, so good luck to Pakistan team. Remember they got off to अ वंडरफुल स्टार्ट जिम्बाब्वे को पाकिस्तान ने पहले मैच में शिकस्त दी थी. ओके, अब हम बात कर लेते हैं जरा जल्दी से आईसीसी टीम ऑफ द ईयर के हवाले से बात करते हैं. T20 टीम ऑफ द ईयर एंड वाह जी वाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नजारा जो है वो नजर आ रहा था वहां पे. और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम खास तौर से बात करें, सो दिस वाज अमेजिंग. सो वी हैड अ ग्रेट ईयर यस्टरडे. T20 वर्ल्ड कप कारकर्दगी, T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी थी. ओवरऑल पाकिस्तान की T20 में कारकर्दगी जो है वो बड़ी कमाल रही और एक बार फिर से वो रिसर्जेंस पाकिस्तान की जो है वो शुरू हुई है इसमें. ऑलराइट, सो इसमें बाबर आजम माशाल्लाह उनको जी आईसीसी की जानिब से जो है वो नॉमिनेट किया गया है एज द कैप्टन ऑफ द टीम. विकेट कीपिंग के फराइज जो है वो सरंजाम देंगे हमारे मोहम्मद रिजवान साहब. और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी भी जो है वो इस टीम में शामिल होंगे. जॉस बटलर इस टीम में शामिल हैं, ओपनिंग स्लॉट में होंगे. इसके साथ उनके साथ मौजूद होंगे एडन मार्करम, डेविड मेला विल बी इन दैट टीम, तबरेज शम्सी इज देयर, मिचेल मार्श ऑफ कोर्स हम जानते हैं ही वाज द हीरो ऑफ द T20 वर्ल्ड कप फाइनल और उनको पांचवें पोजीशन पे बैट करवाया गया. जॉश हेजलवुड इज गोइंग टू बी देयर इन दैट टीम. आई थिंक पिछले साल के जो एक सरप्राइज पैकेज था जिस खिलाड़ी ने वाकई मुझे सरप्राइज किया सही मानों में, श्रीलंकन लेग स्पिनर वनिंदु हासारांगा इज इन द T20 आईसीसी टीम. उसके अलावा मुस्तफीजुर रहमान इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर. सो वेल डन, गुड टू सी 3 पाकिस्तानीज देयर माशाल्लाह, एंड ऑफ कोर्स नो इंडियन प्लेयर देयर. तो ये बात तो मेंशन करना जरूरी ही बनता है. ऑलराइट, जल्दी से जाते आते इंग्लिश प्रीमियर लीग के हवाले से हम बात करते चलें. कल वेल गुड रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर अ टीम फर्स्ट हाफ. तो उन्होंने 3-1 से कामयाबी हासिल की अवे एट ब्रेंटफोर्ड, अ रिजल्ट दैट दे डेस्परेटली नीडेड. लेकिन कल जो है ना वो बड़ा अफसोसनाक रिजल्ट हुआ फॉर लेस्टर. और लेस्टर एट वन पॉइंट इन टाइम टिल द 95th मिनट दे वर विनिंग 2-1, लेकिन 95th और 97th मिनट में जो है वो टॉटनहम हॉटस्पर्स ने बैक टू बैक दो गोल स्कोर किए. अनबिलीवेबल विन. आई मीन डीप इनटू द इंजरी टाइम. और उसका फायदा ये हुआ दैट टॉटनहम जो है दे हैव नाउ वो आर्सेनल के ऊपर छलांग लगा के अब पांचवी पोजीशन पर आ गए हैं. बट टॉटनहम हैव गॉट अ गेम इन हैंड एंड आर्सेनल हैव गॉट टू गेम्स इन हैंड बाय द वे. लेकिन याद रहे जी, आज रात आर्सेनल जो है वो इन एक्शन होगा अगेंस्ट लिवरपूल इन द कैराबाओ कप. ये सेकंड लेग का मैच है अगर आपको याद हो. पहले लेग में आर्सेनल ने बड़ा जबरदस्त एक डिफेंसिव डिस्प्ले पुट अप किया था विद 10 मेन द डिफेंडेड अगेंस्ट द लिवरपूल साइड एट एनफील्ड. और अब इसका आज सेकंड लेग जो है वो खेला जाएगा. सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 1:15 ये मैच होगा. अभी नहीं चलते हैं, आपको एक ब्रेक की जा रहे हैं. इस ब्रेक के बाद अभी गाना सुनेंगे, ठीक है जी. और वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 25 past 8 इज द टाइम और दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. सनराइज शो में आप सुन रहे थे चांदनी रात में, व्हाट एन ऑक्सीमोरॉन, लेकिन डजंट मैटर, ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट वाज अहमद जानसिब एंड Brilliant. All right. Good morning. अच्छा जी, चलें जल्दी से messages भी. Thank you so much. आप लोगों ने बहुत सारे messages भेजे हैं, उनको मैं program में जो time मिलता है तो मैं शामिल करता हूँ. But they've got certain good topics that I need to discuss. आज dawn में front page पे जो है ये खबर आई हुई है. PM invokes Silicon Valley as model for startups. Unveil incentive for small export-oriented businesses. Launches policy to encourage new ideas. Blah blah blah. ये सारी बातें तो चलें जो है ना ये theoretical हो गई. लेकिन चलें जल्दी से ना अगले 5 मिनट में जरा इस पर तफसील से बात करते हैं. आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो स्टार्टअप सीन है उसमें एक आग लगी हुई है. I mean the startup scene is lit right now. Phew. पैसा आ रहा है, छोटे छोटे से स्टार्टअप्स हैं जिनको $2.5 million, $3 million की फंडिंग्स मिल रही है एंड ऑल एंड स्टफ. सो एक सेकेंड जी, हाँ, तो ये छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उनको अच्छी फंडिंग मिल रही है. और आपको कंपनियों के नाम भी सुनने को मिल रहे होंगे. एयरलिफ्ट का आपने सुना होगा, $85 million, $83 million उनके पास आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है. एक और बड़ी कोई वो राउंड की अनाउंसमेंट अब करने वाले हैं कि वो और बहुत ज्यादा पैसे जो है वो लेने में कामयाब, रेस करने में कामयाब हो गए. वी नो अबाउट बाइकिया, वी नो अबाउट सादा पे एंड स्टाफी, काफी सारी कंपनियों के नाम जो है वो आपको सुनने में मिल रहे हैं पाकिस्तान में जो कि इस वक्त अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो उठाने में कामयाब हो रहे हैं एंड ऑल. तो अब वो कहते यही है कि पिछला साल बड़ा कामयाब रहा पाकिस्तान के लिए और तकरीबन कोई कहते हैं कि $375 million की पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में कमिटमेंट्स की गई हैं, कैश इंजेक्ट किया गया है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. नाउ दीज इन्वेस्टर्स कैन बी डोमेस्टिक, दीज कैन बी इंटरनेशनल, लेकिन ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, यानी वो अफराद, वो हजरात जो के बहुत कैश रिच होते हैं, जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, एट टाइम बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, और वो छोटी छोटी कंपनियों में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. ज़ाहिर इन्वेस्ट करने को अल्लाह तवक्कल काम, वो अल्लाह वास्ते वाला काम नहीं कर रहा है, वो उस पर एक रिटर्न चाह रहे होते हैं. तो वो चाहते यही हैं कि उसमें जो है वो इन्वेस्ट करें, और ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े एंड ऑल एंड स्टफ. सो ये वेंचर कैपिटलिस्ट ये काम करते हैं. सो पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो गेम जो है वो काफ़ी ऑन हो गई है स्टार्टअप्स के हवाले से. और अब सिचुएशन ये हुई कि कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है वो एक सेलेक्ट एक ग्रुप से जो है वो मुलाकात की. कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने बुलाया, और आई थिंक अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने जो है ये मीटिंग अरेंज की थी. और उसके बाद जो है उसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आजकल असफर साहब, वो भी मौजूद थे. और जो पाकिस्तान के स्टार्टअप्स का जहाँ तक ताल्लुक है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो एंटिटीज़ हैं जो पाकिस्तान बेस्ड हैं, उसके इंपॉर्टेंट लोग देवर देयर इन दैट मीटिंग. और प्राइम मिनिस्टर ने मेरी उस मीटिंग के एक पार्टिसिपेंट से अभी जो है वो अभी मेरी बातचीत हुई है, और वो मुझे बता यही रहे थे कि इट वॉज़ अ वंडरफुल मीटिंग एंड प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑल ईयर्स. वो बहुत गौर से उन्होंने जो है ये तमाम बातें सुनी स्टार्टअप्स की. ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान, अजन इसमें दो बातें आती हैं. एक तो अफसोस की बात ये आती है कि यार क्या हमें अभी तक हाईएस्ट लेवल पे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम कितने बड़ी एक सोने की कान के ऊपर बैठे हुए हैं. वन चलें जी उसको हम छोड़ देते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया. बिकॉज आप देखें इंडिया में $13.5 बिलियन जहां पे हम अपनी ये 375 मिलियन पे खुश हो रहे हैं, बहुत माशाल्लाह ठीक है. ये तो पाकिस्तान ने पिछले साल जितना स्टार्टअप्स में पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ये पाकिस्तान के सारे सालों की अगर आप मिला लें पैसे, तब भी वो मिलके नहीं बनते इतने. इंडिया में एक साल में $13.5 बिलियन आए हैं. तो अब वो चले हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी में ना हो, लेकिन वो हमसे बहुत पहले इन मामलात में जो है ना वो आगे निकल गए थे. और हम सिर्फ सो रहे थे, हम ये कह रहे थे यार जल्दी से एक हाईवे बनाएंगे हम, एक वो बना देंगे, बिजली का कारखाना लगा देंगे एंड ऑल. बट हम लोग इन चीज़ों पे, दिस इज दी गोल्ड माइन. जो पाकिस्तानी माशाल्लाह इतने ज़हीन लोग, सही है यार, आई नो ट्विटर पे आप बैठते हैं सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट बैठे हुए होते हैं, पाकिस्तान के बारे में डिप्रेसिंग बातें कर रहे होते हैं, मुल्क ऐसा है, वी आर डूम्ड फॉर फेलियर एंड ऑल. नहीं यार, उसके बावजूद हमारे यहाँ लड़के हैं, लड़के लड़कियां हैं जो कि बेहतरीन आइडियाज लेकर आ रहे हैं, और वो बेहतरीन आइडियाज को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं. एंड नाउ द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान. हाउएवर देर आर चैलेंजेस. अब ये $375 मिलियन जो पाकिस्तान के लिए कमिट किया है, सवाल यही पैदा होता है कि ये $375 मिलियन जो है, क्या ये पूरा का पूरा पाकिस्तान आ रहा है? नो, ये पाकिस्तान नहीं आ रहा. ये करते क्या है कि ये पैसा जो है ये परफेक्ट लीगली तरीके से जो कुछ फॉरेक्स हेवन्स हैं, दुबई हो गया एंड सिंगापुर हो गया, वहां पे ये रखते हैं, और जब जरूरत होती है पाकिस्तान ये पैसा रिमिट करके यहाँ पे भेजते रहते हैं. क्योंकि हमारे यहाँ के जो फॉरेन एक्सचेंज के कवानीन, हमारे यहाँ के टैक्सेशन के कवानीन जो हैं वो इतने खौफनाक हैं और इतने मुश्किल हैं कि उनको यहाँ पे कोई इंसेंटिव ही नहीं है ये पैसा लाने का. अच्छा, ख्याल ये किया जा रहा है कि इस साल आतिफ अवान, एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में वेंचर कैपिटलिज्म के हवाले से, इज बेस्ड इन सिलिकॉन वैली, उनका ये ख्याल है कि इस साल पाकिस्तान कैन टच $1 बिलियन पाकिस्तान टच कर सकता है स्टार्टअप फंडिंग में. लेकिन ये मत खुश होइएगा, ये $1 बिलियन जो है ये पाकिस्तान नहीं आने वाला, इट्स नॉट कमिंग टू पाकिस्तान. ये कहीं दुबई में और सिंगापुर में होगा, और जहां जरूरत पड़ती रहेगी वहां पे ये जो स्टार्टअप के जो लोग हैं ये पैसे मंगवाते रहेंगे और ये पैसे यहाँ पे आते रहेंगे. सो गवर्नमेंट हैज गॉट टू डू समथिंग अबाउट दैट. तो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट मीटिंग, ही टोल्ड मी दैट प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी सपोर्टिव अबाउट दैट, और वो बेसिकली जानना ये चाहते थे कि वो कौन से एरिया है जहां पे हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं. जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हर 2 महीने के बाद एक स्टार्टअप, यही जो एक उन्होंने एक पैनल बनाया है, उनके साथ वो मीटिंग रखना चाहते हैं, एंड ही वांट्स टू गेट अपडेट्स अबाउट द वे थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड. सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट हैज हैपेंड. लेकिन अल्लाह ताला इस माइंड सेट को पाकिस्तान के बाबू कल्चर से बचाए. पाकिस्तान के वो जो बाबूज बैठे हुए हैं, वो जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, चाहे वो FBR में बैठे हुए होंगे, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में बैठे हुए होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जहां पे भी बैठे हुए होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होंगे, वो जब ला के एक और पिक्चर प्रेजेंट करेंगे कि ये इतनी बड़ी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है, ये देखें ये वो फलाना, नहीं. इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक द वन एरिया वेयर वी कैन ग्रो अमेजिंगली इज IT, इज कंप्यूटर्स, स्टार्टअप्स, इन पे फोकस करें. बट चलें, आई थिंक द गुड थिंग इज दैट दे आर ऑफ टू अ स्टार्ट. उसमें एक स्टार्ट उन्होंने लिया है, कल प्राइम मिनिस्टर ने इसकी पहली मीटिंग जो है बुलाई है, और अब ये एक रेगुलर फोरम बन जाएगा जहाँ पे वो स्टार्टअप्स के जो है वो नुमाइंदों के साथ मुलाकात कर रहे होंगे. एंड आई थिंक दिस इज दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप. सो वी हैव गॉट टू अप्रिशिएट. बट वो कहते हैं ना, द प्रूफ इज इन द पुडिंग. अब देखते ये हैं कि क्या वाकई कवानीन के एतबार से, यानी कवानीन के हिसाब से, टैक्सेशन के मामलात के हिसाब से, क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर की जो टॉक है, दैट डज दैट कन्वर्ट इनटू डीड्स एज वेल. आई होप उनको अंदाजा हो गया होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इनफ्लोज इन पाकिस्तान. वी आर अ कैश थर्स्टी, वी आर अ कैश हंग्री कंट्री. हमें अपने सब कुछ चीजें रखवा के IMF के पास जाना पड़ रहा है. उसको हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यही पैसा पाकिस्तान लैंड होना शुरू हो जाए. I hope Prime Minister understand that. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil, and thank you so much, guys. Lots of feedback about the discussion on the startups and all. Imran Mevan साहब कहते हैं, in connection to what you said about expected money inflow through startup, it is unfortunate that government is not looking at stock market, that avenue that can attract multi-billion inflow. We saw money came via RDA, but major chunk was in fixed income. आई थिंक इमरान, हमने इस पे प्रोग्राम में तफसीलन वैसे हम जिक्र कर चुके हैं और उसमें बात भी कर चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग दैट थिंग आउट. आई मीन सीरियसली, इमरान स्टॉक मार्केट के एक सही मानों में एक्सपर्ट हैं और इमरान को इस बात का अंदाजा है कि इस वक्त हम पाकिस्तान में यार किस, मैं कल पी रेशो के हवाले से बात कर रहा था, यानी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इज सो डैम अट्रैक्टिव. कल भी स्टॉक मार्केट में मेजर सेलिंग देखने में आई है, तो आपका पी रेशो जो है वो और अट्रैक्टिव हो गया है. कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटीज आप चेक करें, लेकिन उसके मुताबिक उनकी अगर स्टॉक प्रोडक्ट की प्राइसेस आप चेक, उनके स्टॉक्स की प्राइसेस चेक करें, आप हैरान रह जाएंगे. यानी सोचें, अगर स्टॉक मार्केट का जो आपका पीक चल रहा था 2015-16 का जो था, उसमें कोई अगर बोलता कि यार आपको ये लकी और डीजी और ये शेयर जो है, ये आपको OGD, ये आपको इस प्राइस में मिल रहे होंगे, तो आप कहते हैं, वो भी 5-6 साल बाद आप कहते हैं यार क्या मजाक कर रहे हैं यार. तो यानी आई मीन इट्स हार्ड टू बिलीव मैन, सीरियसली यू आर एब्सोल्युटली राइट. स्टॉक मार्केट में बहुत पोटेंशियल है अगर हम बाहर से लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, लेकिन जाहिर है बाहर से पैसा, वैसे इमरान मेरा तो ये ख्याल है यार, बाहर से लाने से, यस यू आर राइट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस तरह जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको आप कहते हैं, वो इधर आ सकती है. बट पहले हम अपने लोगों को भी थोड़ा सा करें ना यार, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है. बट बहरहाल जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई कहते हैं जहीर. गुड मॉर्निंग आपको भी. माशाल्लाह दुबई में सुना है आजकल बड़ा खूबसूरत मौसम चल रहा है, और अभी सुना है बारिश भी हुई तो बड़ा जबरदस्त. इसके अलावा आसिफ बेग साहब कहते हैं, सलाम, नाइस टू हेयर अबाउट स्टार्टअप्स. या मेरा जो ना स्टार्टअप्स में बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक आजकल जो है ना ये बन गया है, और मैं काफी ज्यादा इसके बारे में जो है ना वो बात करना चाहता हूँ. एंड या ग्रेट. गौहर खान कहते हैं, आई विश प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज लिसनिंग टू योर शो. देखिए, मैंने अपने शो में जो बात की है ना, वो कल इमरान खान को स्टार्टअप्स के जो नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे और वेंचर कैपिटलिस्ट, आई एम श्योर सम वेंचर कैपिटलिस्ट वुड बी देयर एज वेल, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज इमरान खान को बता दिए हैं. वहां पे FBR के नुमाइंदे भी मौजूद थे, वहां पे मिनिस्ट्रीज के लोग भी मौजूद थे. शौकत तरीन साहब वाजंट देयर बिकॉज आपको पता है कि उनको कोविड हो गया है, इसकी वजह से उन्होंने अपनी तमाम जो सरगर्मियां हैं वो फिलहाल 1 हफ्ता 10 दिन के लिए जो है वो पोस्टपोन कर दी हैं. सो अभी जो सिलसिला है इनका वो यही है कि ये इमरान खान साहब को ये सारी बातें कल पता चल गई हैं. अब इस पर वो क्या एक्शन लेते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन, और कि वो क्या होगा. बट लेट्स सी, आई मीन इफ द प्राइम मिनिस्टर इज पर्सनली, देखिए मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, ये जो IT वाला शोभा है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउसेज, माशाल्लाह इस वक्त जो भी सॉफ्टवेयर से वाबस्ता है या पाकिस्तान में IT पे नजर डालता है, उसको इस बात का अंदाजा होगा कि इस वक्त एक वहां पे भी जिस तरह स्टार्टअप में आग लगी हुई है, इस वक्त पाकिस्तान के माशाल्लाह सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी, IT सेक्टर में भी एक जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है, बॉयंसी देखने में आ रही है. अनफॉर्चुनेटली ये चीजें मीडिया पे डिस्कस नहीं होती हैं, कि मीडिया पे इस वक्त हमारे यहाँ आपको पता है कि इमरान खान साहब के जाने की बातें और मियां साहब के आने की बातें इस वक्त ज्यादा जो है वो डिस्कस होनी है. अदालती कार्रवाइयों के ऊपर हम बात कर रहे हैं. देर आर लिटिल स्मॉल विन्स जो पाकिस्तान कामयाबियां हासिल की हैं पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद अरसों में, तमाम डिफिकल्ट हालात के बावजूद. मुझे याद है जब मुशर्रफ साहब का बुरा टाइम आया था 2007 में, उस वक्त मैं एक बात बोला करता था कि यार जनरल साहब से नफरत आप करनी है, आप जरूर कीजिए, बिल्कुल हर इंसान की तरह उन्होंने बहुत सारी गलतियां की होंगी, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 7-8 साल में जो इकोनॉमिक फ्रंट में कामयाबी हासिल की है, बराए मेहरबानी जो किए जा रहा है पाकिस्तान, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनको हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा. तो इसलिए खुदारा गवर्नमेंट और मुल्क के दरमियान डिफरेंस हम समझना सीखे ना यार, हम समझते हैं, कोशिश करते हैं. बहरहाल वो 15 साल पहले की बात है, 14 साल, अब तो मैं इस मुतालिक ज़्यादा बातें भी नहीं करता, लेकिन मैं अब ये बात कर रहा हूँ कि यार इस वक्त अगर मैं आपको अपनी कंपनी का बता देता हूँ, फॉर अस it is becoming near to impossible to retain people in IT right now. IT में इस वक्त लोगों को retain करना department में. I'm pretty sure मेरे ये अल्फाज सुन के बहुत सारे दोस्तों ने असबात में सर भी लाए होंगे, कह के यार उनकी कंपनी में भी यही मसला है. बिकॉज सॉफ्टवेयर हाउसेज में ना सिर्फ हमारे नौजवान जा रहे हैं बल्कि दे आर गोइंग इन एट सम वेरी गुड सैलरीज, दे आर गोइंग एट स्टार्टअप एट वेरी गुड सैलरीज. एंड इस वक्त जो सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में ग्रोथ का नंबर भी आप देख सकते हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा नंबर जा रहा है. तो इमरान खान साहब मैं कहता हूँ जितनी मोहब्बत और जितनी अकीदत जितना प्यार प्रेम उनको रियल स्टेट सेक्टर के साथ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ है, यानी खुदा की कसम यानी पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रियाँ एक तरफ और ये टेक्सटाइल एक लाडली एक इंडस्ट्री है, वही कंस्ट्रक्शन भी खान साहब के जो है ना वो इनर सर्किल में वो दिल में जो है ना वो जगह बना रही है. जितनी मोहब्बत वो इनको दे रहा है ना वो काश ये हमारे आईटी और स्टार्टअप को खान साहब ये टाइम देना शुरू कर दें. पाकिस्तान में एक इनकलाब आ सकता है यार, ये IMF IMF के पास जाने की ज़रूरत ही हमें नहीं पड़ेगी. सो बहरहाल लेट्स सी, आज थोड़ा जज्बात में मैं ज्यादा बोल गया लेकिन बहरहाल चलें जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके एंड देन वी हैव गॉट सरोज कहते हैं प्लीज एक्सप्लेन लेमैन टर्म इफ समवन हैज नॉट फाइल्ड टैक्सेस एंड हैज फाइल्ड and has tax deduction in salary only, does he have to file separately and if he files now will he be in trouble for previous years? नहीं देखिए 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 ये वैसे मैं प्रोग्राम में सरोज काफी दफा इस चीज का जिक्र कर चुका हूँ. इवन इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन और आपकी कंपनी आपकी आपका टैक्स जो है वो एट सोर्स काटती है, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एक सर्टन साइज के ऊपर कंपनियों को अपने एम्प्लॉयज का टैक्स सोर्स पे काटना पड़ता है. आपको तब भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आपको अपना टैक्स रिटर्न, आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. अच्छा, आप किसी भी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं, वो आपको समझाएगा वो तरीका कि जिसके थ्रू आप यू कैन मेक एन एंट्री. इसमें डरने की कोई बात नहीं है इसका. तो अगर अगर देखिए अगर हुकूमत आपको डराने ही लगेगी तो फिर तो इसका मतलब ये कि टैक्स फाइलर का नंबर बढ़ेगा ही नहीं. हुकूमत तो इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है कि टैक्स फाइलर्स का नंबर बढ़ जाए. लोग कहेंगे नहीं यार मैंने तो 8 साल से टैक्स नहीं दिया, अब मैं जाऊंगा तो बुरी तरह फंसूंगा मैं. आप मेरे ख्याल से किसी कंसल्टेंट से राबता करें, टैक्स कंसल्टेंट से. नहीं समझ में आता तो मुझे बता दें यार, आई कैन राउट यू टू फ्यू पीपल दैट आई नो, आपको वो चीज़ें आसान कर देंगे. बट यू हैव टू फाइल योर टैक्स रिटर्न. वो आपको अपनी एक सालाना आदत, इसको अपने सालाना कैलेंडर का एक हिस्सा बना लें, फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न्स. ऑलराइट जी, आलमगीर पे नाश्ता चल रहा है हारिस खुर्शीद साहब का. सर ग्रेट, एंजॉय करें सर, जबरदस्त. फहीम अली खान साहब को स्टार्टअप पे डिस्कशन में मजा आया. इसके अलावा देन वी हैव गॉट एमएस शारिक कहते हैं ब्रांड से कह दो जितना बढ़ना है बढ़ जाओ, हमारे पास इमरान खान है जो टैक्स कलेक्शन रिड्यूस करता जाएगा. ओके यहाँ तो लोग कह रहे हैं प्राइसेस डबल करके टैक्स बढ़ गए हैं, जबरदस्त. इंतखाब अली साहब कहते हैं डियर अदील विजिटेड काबुल, स्टेड एट सरीना होटल एंड शेयर्ड पिक्स विद अर्नब गोस्वामी एज नो फिफ्थ फ्लोर इज बिल्ड देयर. वाह क्या बात है, जबरदस्त. देन वी हैव गॉट नवीद अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम प्रेजेंट सर, थैंक यू सो मच. इसके अलावा अनीक अहमद साहब कहते हैं आईटी सेक्टर कैन डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान, टारो टेक्नोलॉजीज अ लाहौर बेस्ड इमर्जिंग फिनटेक स्टार्टअप हैज सिक्योर्ड 3.5 मिलियन इन प्री सीड फंडिंग थ्रू the combination of strategic partnership and an angel investor. That is brilliant. I mean, seriously, there are so many is waqt jo hain wo aapke paas stories hain Pakistani startups ke hawale se jahan pe naujawan ladke ladkiyan with a brilliant idea, they have been raising a lot of funds. So yeah, great. Saklan Gilani sir, thank you so much, you are most welcome. Can you please shed some light on tier 2 PTI members and office holders if they are more or less corrupt than the previous regime? आपके पास कोई करप्शन की जो है वो हो एग्जाम्पल तो मेरे सामने शेयर करें, मैं ज़रूर अपने साथ शेयर करूंगा. मैंने ज़ाती तौर से होती भी देखी नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता. सिंध में क्योंकि अपने सामने में होता हुआ देखता हूँ करप्शन, तो इसलिए मुझे नज़र आ रही होती है, इसलिए मैं उसका जिक्र भी कर रहा होता हूँ. फिलहाल मैं आपको ब्रेक की जाने लिए जाता हूँ, मिलता हूँ आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम ट्यून किया. सो वेरी गुड डिस्कशन अबाउट द स्टार्टअप्स टुडे एंड आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं मेरे पास. और एक चीज़ जो लोग मेरी जिस बात से अग्री कर रहे हैं, मेरे पास तीन मैसेजेस इनफैक्ट अभी आए हुए हैं, गाइज हु हैव बीन वेरी हायर अप्स इन आईटीज इन देयर रिस्पेक्टिव कंपनी, और वो ये कहते हैं कि अदील यू आर टोटली स्पॉट ऑन. इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया इन द आईटी सेक्टर, बिकॉज नो पीपल आर नॉट गोइंग अब्रॉड, पीपल आर स्टेइंग इन पाकिस्तान. वो पाकिस्तान में ही रह रहे हैं और पाकिस्तान में रह के दे आर मूविंग टू वेरी हाई सैलरी. सीरियसली यार, एक प्रोग्रामर आगे 80,000 का था, अब वो जो जॉब छोड़ के जाते हैं, आप कहते हैं हाँ यार आओ बताओ कुछ पैसे निगोशिएट करते हैं, कहते हैं सर 1,75,000 रुपये मिल रहे हैं सर, मैं आप मुझे बताएं मुझे 2,00,000 रुपये देंगे, तो आप कहेंगे भाई 2,00,000 कहाँ, नहीं भाई तू फिर चला जा. ये वाला सीन चल रहा है एंड इट इज गुड यार. बच्चे आर इम्प्रूविंग देयर लाइफ स्टाइल छोटी उम्र में. दिस इज द आई टी ड्रीम जो कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी तारीख में कभी भी वो आई टी ड्रीम जो है ना वो लिव अप नहीं किया, जो कि यूएस में लोगों ने 90s में सिलसिला हुआ, इंडिया में आज से 10-20 साल पहले जो है वो आया. चाइना लिव्ड अप द ड्रीम. आई थिंक पाकिस्तान का टाइम अब शायद इसमें आ गया है. सो लेट्स रियली होप. आई मीन परहैप्स आई एम बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. पाकिस्तान की बैटल ये है, कभी कुछ अच्छा शुरू होता है तो कोई ना कोई मसला आ जाता है. सो आई रियली होप दैट गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट इट. और वो जो मैंने पॉइंट बोला था ना कि जिस तरह अपने कलेजे से कलेजे उनका से लगा के रखते हैं इमरान खान साहब रियल एस्टेट और टेक्सटाइल को, अगर आईटी को रखना शुरू कर दें और स्टार्टअप को रखना शुरू कर दें, ये एक पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन हो सकता है. एडी बेग थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग. साइम जमाली साहब थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. और जो है वो बिल्कुल वो भी यही बताते हैं उनकी कंपनी में यही फेसिंग, एवरीवन इज फेसिंग एंड एग्रीज के यार है प्रॉब्लम है ये. सर्वर चाचू प्रोग्राम सुन रहे हैं, कह रहे हैं नो बाबूज आर लिसनिंग टू योर शो बिकॉज ऑल स्लीपिंग एट दैट टाइम एंड दे स्टार्ट कमिंग टू द ऑफिस एट 11 or 12. व्हाट डू यू थिंक? कुछ हैं चाचू, कुछ हैं काम करने वाले, कुछ अभी भी ब्यूरोक्रेसी में इस तरह के लोग हैं, सरकारी इस तरह के लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है. सीरियसली जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है. सो काफी हद तक बात आप दुरुस्त कर रहे हैं कि बाबू आता लेट है जाहिर है, लेकिन हैं हर इदारे में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने नेक लोग भरे हुए होंगे जिनकी वजह से वाकई ये मुल्क चल रहा है. अदनान रियाज कुरैशी कहते हैं यू कैन पे अ पेनल्टी ऑफ 1000 फॉर प्रीवियस इयर्स एंड बिकम अ फाइलर. ओके जबरदस्त. एंड यू कैन बिकम एन एक्ट ऑन, यू कैन बी ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इमीडिएटली. सो सरोज डू इट माई फ्रेंड, डू इट. इसके अलावा शारिक इदवाई साहब कहते हैं इंडीड सॉफ्टवेयर आईटी सेटअप सेक्टर नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज्ड, बट यार लुक एट बांग्लादेश वियतनाम एंड सी हाउ दे हैव बीन, हाउ दे हैव गिवन प्रिविलेजेस टू टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, वेयर वी आर सो फार. माइंड यू दिस इज द मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री विद मैस जॉब्स. शारिक साहब इज फ्रॉम द गारमेंट सेक्टर एज वेल. उनको लग रहा है कि मेरे कॉमेंट्स है ना थोड़े से वो इनसिक्योर हो गए. देखिए सर मैंने तो शारिक साहब मैंने क्या ये बात बोली कि यार टेक्सटाइल सेक्टर को बंद कर दो, टेक्सटाइल कंपनियों को ताले लगा दो? नहीं मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने जिस तरह इंसेंटिवाइज किया है ना, यू नो एप्टमा पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉबिंग बॉडीज है, जो ऑल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है, ये पाकिस्तान की लॉबिंग के उस्ताद हैं. ये एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे हुए हैं. रियल स्टेट उस्ताद यानी लॉबिंग माशाल्लाह कमाल. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको पता है यानी बिग थ्री कितने साल डोमिनेशन मेंटेन की. मैं ये कह रहा हूं कि यार यही टाइम यही मोहब्बत आप इनको शो करें. व्हाई कांट वी ग्रो एज अ मेजर गारमेंट एक्सपोर्टर एंड अ मेजर टेक्सटाइल एंड अ मेजर आईटी एक्सपोर्टर एज वेल एंड अ मेजर मैग्नेट फॉर स्टार्टअप फंडिंग. ये तीनों काम एक साथ भी तो हो सकते हैं ना शारिक साहब, सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है. And that's it. All right, जी, इसके अलावा तहीम ने बहुत प्यारा सवाल पूछा है. And honestly speaking, मेरा ये ख्याल है कि I think I should have answered this thing. I recently recorded a pilot for a TV channel for a program जिसमें हम startups के हवाले से ही बात कर रहे थे. और उसमें पहला सवाल ही मैंने यही रखा था कि यार what is a startup? So तहीम अगर आप startup की बात करते हैं तो startup नाम से लग रहा है that it is a business which is at the infancy stage, यानी वो business है जो कि अपने बिल्कुल इब्तदाई दौर से गुजर रहा हो, उसको एक साल दो साल सालमन या ढाई साल का अरसा जो है वो गुजरा हो. Your restaurant can be your startup. I mean, मैं एक बिरयानी का stall लगाता हूँ, I can say this is my startup. However, आजकल के दौर में ये जो startup का word है, this word is related या ये इस्तेमाल होता है in conjunction with those businesses जिसमें information technology या internet या mobile या इन चीज़ों का technology का कुछ ना कुछ influence हो या उसका कुछ ना कुछ सिलसिला हो. जैसे कि recently I know about this particular, मैं IBA के कुछ बच्चों से मैं बात कर रहा था, multinational के वो बच्चे छोड़ के उन्होंने अपना I think GA technology के नाम से ये थे, ये जिन्होंने एक फार्म टू रिटेल एक डिलीवरी मॉडल बनाया है एंड दे मैनेज टू गेट $2.6 million की स्टार्टअप उनको जो है ना प्री सीड फंडिंग जो है वो मिली थी. ब्राइट यंग बॉयज जिनका मैंने छोटा सा इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया था फॉर दैट पायलट दैट आई रिकॉर्डेड फॉर द टीवी चैनल. आई होप दैट गोज ऑन एयर, इंशाल्लाह इट डज. वो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हमने बनाया था और उसमें उनसे जब वो क्या था वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो आरती वाला फैक्टर है उसको वो रिमूव करना चाह रहे हैं. वो जो मंडियों में जो गेम लगती है वो डायरेक्ट फार्म से लेकर चीजें रिटेल तक पहुंचाना चाहते हैं. सो आइडिया ऐसा है, लेकिन दिस वुड बी डन थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. सो स्टार्टअप इज अ बिजनेस जो कि अपने बिल्कुल इब्तदाई दौर से गुजर रहा हो, लेकिन आजकल के दौर और कॉनोटेशन में यहाँ पे आईटी वाला एलिमेंट जो है वो सामने आ जाता है, इन्फॉर्मेशन वाला एलिमेंट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एलिमेंट सामने आ जाता है. मैंने जिन कंपनियों के नाम लिए, मसलन एयरलिफ्ट हो गई, बाइकिया हो गई, आई मीन दीज कंपनीज आर एसेंशियली सॉफ्टवेयर कंपनीज. ओके, ये सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो कि लॉजिस्टिक्स का काम कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है. मैंने सादा पे का नाम लिया, देर इज अ टैग TAG नाम की कंपनी जो कि दावा करती है उन्होंने बहुत बड़ी फंडिंग उठाई है. ये सारी फिनटेक कंपनियां हैं, यानी ये बैंकिंग को टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे लाके लॉन्च करनी है. तहरीम, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. आप में से कोई भी हमारे इसे व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से बातें चल रही हैं, सो पीपल वांट टू जॉइन दैट, सो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं. कराची का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना वो भर चुका है, फुल हो चुका है, यानी अब उसमें जगह नहीं है. तो अब मेरे पास मत आइए हमें कराची वाले ग्रुप में ऐड करने. किसी ने मुझे कहा था टेलीग्राम पे ग्रुप बना लें, उसमें अनलिमिटेड मेंबर्स होता है. आई डिड नॉट नो अबाउट दैट बिकॉज़ आई डोंट यूज टेलीग्राम, बट लेट्स सी व्हाट टू डू अबाउट दैट. सो अभी जो है महविज जमान कहती है आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट स्टार्टअप बिकॉज यंग जनरेशन को कोई नहीं रोक सकता. यस, उनको कोई नहीं रोक सकता, दे आर वेरी पावरफुल पीपल. ऑलराइट, अभी आपके वक्त आ गया, मैं आप लोगों से जाता हूं. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी कल सुबह एक बार फिर. सी यू टुमारो मॉर्निंग, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.